ओम शांति। आप सुबह से भी बहुत सुंदर बातें आध्यात्मिकता के सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आप जरूर सोच भी रहे होंगे कि ये बातों को हम अपने जीवन में कैसे लाएं, नहीं? क्योंकि हम सुनते हैं कि अप्लाइड नॉलेज इज पावर, अर्थात जो ज्ञान की बातें हम जीवन में धारण कर लेते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं, उससे हमें बहुत फायदा मिलता है। तो यहाँ हम राजयोगी जीवन अर्थात प्रयोगी जीवन, रोज हमें भी बहुत सुंदर परमात्मा यहाँ पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये बहुत सुंदर ब्रह्म कुमारी इसकी, चाहे सोशल सर्विस विंग हमारी, ये सिक्योरिटी सर्विसेज विंग है, बहुत सारे हमारे प्रभाग, अभी 26 प्रभाग हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में आध्यात्मिकता का कैसे समावेश हो सकता है, आध्यात्मिकता से कैसे हमें फायदा मिल सकता है, उसके बारे में अनेक कार्यक्रम बने हुए हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जब भी हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में धारण करने की बात समझते हैं, तो हमें लगता है कि ये अच्छी बातें हैं सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल ऐसे लगता है, मुश्किल है, लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं? कल से अच्छी तो लग रही है बातें, अनुभव भी अच्छा हो रहा है, प्रकृति से भी समीप है और यहाँ के शांति का वायुमंडल भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम ये बातों को अपने निजी जीवन में देखना चाहें तो अपने मन में क्या संकल्प आता है? इजी है, मुश्किल है? मुश्किल है, इजी है, दोनों तो नहीं हो सकते, नहीं? अगर मुश्किल है तो माना इजी नहीं है, तो इजी तो है, क्योंकि अगर देखें तो ज्ञान समझने में भी कितना सहज है। यहाँ हमारे रोज के जो हमारे अपने स्पिरिचुअल हमारी लर्निंग होती है, उसमें भी परमात्मा हमें कहता है, समझाता है कि सहज ज्ञान और सहज राजयोग है, और हमें रोज ये पढ़ाई बहुत प्यार से परमात्मा पढ़ाते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात ब्रह्मा कुमारी इसमें मुझे पर्सनली लगी कि एक बहुत सुंदर हमें स्टूडेंट लाइफ, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन का अनुभव प्राप्त होता है। रोज सीखना है, रोज कुछ और नया समझना है, रोज कुछ नई बातों को अपने जीवन में प्रयोग करना है। सीखना अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। हाँ, हम अपने स्टूडेंट लाइफ को अगर देखें तो डिफिकल्ट था आपका, तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है जिसमें आपको बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती, फिर भी वो समय अच्छा लगता है, नहीं? हम स्वीट मेमोरीज हमारे पास होती है, ऐसा है आप सभी के? क्यों उस समय की वो मेमोरी स्वीट क्यों होती है? सीखने में, ट्रेनिंग लेने में क्यों हमें अच्छा लगता है? वो मेमोरीज हमें बहुत अच्छी लगती हैं, अभी भी जब याद करते हैं तो ऐसे कहते भी हैं, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें हमें कोई ना कोई नई बात समझने की एक बहुत जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, हर नई चीज को हम बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर उससे हमें जो अनुभव मिलता है वो आपस में हम शेयर भी करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ भी हमारी रोज की एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट लाइफ है, हम रोज यहाँ नई बातें सीखते हैं, आध्यात्मिकता की और गहराई सीखते हैं, और इन बातों को मुझे अपने दैनिक जीवन में कैसे लाना है, हर क्षेत्र में, सेल्फ के क्षेत्र में, अपने स्व के संबंधित, हमारी मन की स्थिति, हमारी अंतर की जो संस्था है, जो आज सुबह हमने देखा, स्व को पहचाना, आज सुबह का आपका लेसन हुआ 7 to 8 का मॉर्निंग का लेसन, स्व को जाना, हमारी आध्यात्मिक पहचान, हमारी आंतरिक संस्था के बारे में हमने जाना, तो वो जानना, उसमें प्रयोग करना, फिर यही ज्ञान की आध्यात्मिक बातों को अपने कार्य क्षेत्र में प्रयोग करना, जो भी आप मिलिट्री सर्विसेज में है वहां प्रयोग करना, फिर फैमिली में प्रयोग करना। तो ये रोज का हमें बहुत सुंदर यहाँ मौका मिलता है, और जब इसको जीवन में प्रयोग करते हैं तब इससे हमें लाभ, फायदा प्राप्ति होती है। तो हम देखते हैं कि कई बातें हम अपने आप को भी समझाते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं, अपने कलीग्स को समझाते हैं, और बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो वो सारी जो समझ है उसको हम अपने जीवन में कितना मैंने उतारा है। तो हम जानते बहुत कुछ हैं और हम क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में थोड़ा गैप है। तो गैप को पूरा करने के लिए यहां हमें परमात्मा राजयोग सिखाता है, और पहली पढ़ाई हमें स्वयं को सिखानी है। तो यहां जब हम कोई भी टॉपिक पर हम सुन रहे हैं तो यहां हम समझ रहे हैं कि ये बातों को हमें अपने आप को समझाना है, अपने आप को समझाकर इसको अपने जीवन में नेचुरल रूप में, स्वाभाविक रूप में धारण कर लेना है। तो यहां हम जैसे आज का हमारा टॉपिक संबंधों पर है, तो आज के मॉर्निंग सेशन के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो संबंधों में समरसता। लेकिन सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण संबंध हमारा किसके साथ है? किसके साथ है? परमात्मा के साथ है। बहुत अच्छा, क्योंकि वहां इस संबंध में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसा है ना? एक्सपेक्टेशन है, होंगी भी, अगर हम पूरा करते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं भी करते हैं तो भी संबंध समीप ही रहता है ना? ऐसा फील करते हैं कि ईश्वर कहता है, नहीं तुमने आज ये चीज नहीं किया इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। नहीं, परमात्मा से वो समीपता, प्रीत हमेशा महसूस होती, तो हम फील करते हैं कि वो संबंध अच्छा है। उसके लिए भी, परमात्मा से भी समीप संबंध अनुभव करने के लिए किसके साथ संबंध जोड़ना आवश्यक है? किसके साथ संबंध जोड़ना आवश्यक है? अपने आप के साथ। तो आज तक हमने लगा हम तो हमारे साथ हैं ही, अभी अपने साथ संबंध की बात ही क्या है। लेकिन आज के मॉर्निंग के सेशन के द्वारा हमने समझा कि हमने आज तक जिसके साथ संबंध जोड़ा वो कौन सा था संबंध था? बाह्य स्व के साथ, बाह्य स्व के साथ। लेकिन अब हमने बाह्य स्व को चलाने वाली ये आध्यात्मिक शक्ति, उसको पहचाना, आत्मा को पहचाना, स्वयं को पहचाना। किस रूप से पहचाना? कि आत्मा एक बहुत सुंदर डिवाइन एनर्जी है, उसका स्वरूप हमने देखा स्पार्क ऑफ एनर्जी है। किसकी संतान है? परमात्मा की संतान है। उनकी विशेषताओं को आज हमने देखा। तो जब हम संबंधों की बात करते हैं तो पहला संबंध हमारा अपने आप के साथ बहुत अच्छा होना जरूरी है। न चाहते भी हम सारा दिन अपने आप के साथ बातें कर रहे हैं, हम कॉन्शियस नहीं है, लेकिन सारा दिन एक सेल्फ टॉक चलता रहता है, चलता है। आर यू अवेयर ऑफ इट? आप जानते हैं, जागृत है उसके लिए, अपने आप के साथ। हाँ, ये सुन रहे हैं, एक बहन क्या बोल रही है, अच्छा ये ठीक तो है, हाँ नहीं ये मेरे को नहीं लगता है हम कर सकेंगे, हाँ ये अच्छा है, ये नहीं है। नहीं, अपने साथ बातचीत कर रहे हैं, अभी अभी सुनते सुनते भी कर रहे हैं। तो ये हमारा एक नेचुरल सेल्फ टॉक चैटरिंग अंदर होता रहता है। ये सेल्फ टॉक कितना सकारात्मक है, कितना हमें अपने आप को सशक्त करता है, कितना हमारा अपने आप के साथ संबंध अच्छा है ये बताता है। हम अपने आप के साथ कितनी अच्छी बातें करते हैं, हम अपने बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, हम अपने आप को कितना प्यार से मोटिवेट करते हैं, गलती हो भी जाती है हमसे, कितना हम उसके लिए अवेयर हैं, कितना हम अपने आप को समझाते हैं, कितना सीख कर फिर आगे हम अपने आप को मेंटरिंग करते हैं, बढ़ाते हैं। जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि यहां हम जब आए ही हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य ऊंचा तो सेल्फ चेंज का है ना? तो सेल्फ केयर में, स्व की संभाल करने में, स्व के साथ संबंध सुखदायी बनाने में, सेल्फ चेंज, स्व को परिवर्तन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम देखते हैं कि अपने आप के साथ संबंध कितना सदा ही सुखदायी है, शक्तिशाली है, समीप है, अपने आप को कितना हम मोटिवेट कर पा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कितना अपने आप को उठा रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो हम अपने आप के साथ जो बातचीत करते हैं उतना कितना पॉजिटिव बात करते हैं, नहीं ये भी चेक करेंगे, सारा दिन हमें ये चेक करते रहना है। और इसलिए ये चेकिंग जब हम करते हैं तो कई बार रियलाइज होता है कि अपने साथ सिर्फ अच्छा नहीं बात कर रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, कभी कभी कंपेयर भी कर रहे हैं, ये इन्होंने ये अचीव कर लिया, मेरा तो ये ठीक नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं पाया, ये मेरे लिए मुश्किल है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, कहते हैं अपने आप को। तो वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक हो जाता है, तो हम अपने पास कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारा अपने साथ क्या संबंध है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम औरों के साथ संबंधों को और सुखदायी समरसता से भरपूर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मूल पहला संबंध अपने आप के साथ है। जितना हम अपने बारे में अच्छा सोच पाएंगे उतना ही औरों को के लिए अच्छा सोचेंगे। तो हम कौन सी ऊर्जा अपने आप को दे रहे हैं? तो अब तक हमने समझा संबंध अर्थात जो हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और जो व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं महत्वपूर्ण क्या है कि हम एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा स्व के साथ संबंध सिर्फ और सिर्फ अच्छा हो, अपने आप को हमेशा हम इनकरेज करते रहें, हम अपने को चेक जरूर करें, अपने को समझाएं जरूर, लेकिन कैसे, शिक्षा जरूर दें, लेकिन कैसे, जो हम उस अपने आप को सशक्त कर सके, मोटिवेट कर सके कि ये हमें आगे ऐसे करना है। तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं इसको देखना है और इसको हम आध्यात्मिक ज्ञान से परिवर्तन करते जाते हैं। जैसे आज हमने सुबह देखा हमारी स्व की पहचान, तो स्व के बारे में हमने कौन से गुण देखे, थोड़ा बातचीत करना जरूरी है क्योंकि आप में से कई तो शांति में बैठे हैं, नहीं जागृत रहना जरूरी है क्योंकि ये समय ऐसा है। क्या क्या देखा, आत्मा के गुण कौन से हैं, ओरिजिनल सिस्टर कौन से गुण हैं जी? हाँ, मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा है, ये तीन शक्तियां हैं, तीन फैकल्टीज है आत्मा की। आत्मा के ओरिजिनल गुण कौन से हैं? सात है, अच्छा वेरी गुड, सत्व गुणी आत्मा है। और फिर गुण कौन से? मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, एक एक बोलना, तो एक एक बोलना फिर एक बोलना, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, पूरा सेंटेंस बोलिएगा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये अपने लिए सारा दिन चिंतन करना, अपने आप को याद कराना बहुत जरूरी है। ये हमारा नेचुरल प्रोफाइल है। जैसे हम देखते हैं अपने शरीर के कारोबार, जो भी आप जहां भी हैं, आप आर्मी में हैं, आप बीएसएफ में हैं, आप सीआईएसएफ में, जो भी आपका मिलिट्री सर्विस यूनिट है, उसमें आपका क्या रोल है, कहाँ आप कार्य कर रहे हैं, पोस्टिंग कौन सी है, आपकी जिम्मेवारी कौन सी है, ये आपको याद रहता है? नेचुरली याद रहता है ना, कोई भूलता तो है ही नहीं कभी, रात को सो जाते हैं तो भूल जाते हैं, सुबह कुछ पढ़ना पड़ता है फिर याद आता है, नहीं। लेकिन आत्मा का जो ओरिजिनल प्रोफाइल है उसको तो हम भूल गए। तो अपने आप को रोज सारे दिन में बार बार प्यार से याद कराना अपने ओरिजिनल गुण और शक्तियों को। तो जैसे आत्मा अपने ओरिजिनल गुण और शक्तियों को सामने रखती है तो रियलाइज क्या होता है, जो हम चिंतन कर रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं, और जो हम रियलिटी में, उसमें गैप दिखाई देता है, हाँ, तो हम प्यार से फिर अपने आप को याद कराते हैं कि भले इस समय हमने गुस्सा कर लिया, लेकिन ओरिजिनली हम कौन है? शांत स्वरूप आत्मा है। तो अपने आप को हमेशा उस आत्मिक स्वमान में रखना, ये परमात्मा हमें यहाँ रोज सिखाता है। रोज हमारी जो मॉर्निंग हमारी स्टडी होती है, उसमें हमें बहुत सुंदर स्वमान मिलते हैं और वो सारा दिन हमें प्रैक्टिस करना है अपने आप को, और फिर चेक करते जाना है कि वो स्वमान जो है उसके आधार से हमारे संकल्प, बोल, कर्म है, जीवन है। अब हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं, हमारी सोच के आधार से हमारे संबंध भी बनते जाते हैं। तो औरों के लिए भी हम क्या सोचते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक तो हमने क्या ध्यान दिया कि हम औरों के लिए क्या कहते हैं, नहीं? जब वो सामने है तब भी ध्यान रखते हैं, पीछे है तब भी ध्यान रखते हैं ना कि नहीं रखते हैं? रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं। अच्छा, तो हम एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं, एक दूसरों को क्या कहते हैं, हर एक शब्द में भी ऊर्जा है। फिर हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। अब अगर हम सिंपल रूप में देखें तो एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, एक मिनट का समय, 60 सेकंड्स, ठीक है? अब एक मिनट में आप कितने कर्म कर सकते हैं? जैसे अगर आपके ऑफिस में कोई आ जाते हैं, आपसे कोई काम है किसी को, तो आपके पास जैसे ही आते हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं आपके चेयर पर, आप उनको कुछ टाइम लेकर आए हैं, तो फिर जैसे वो अपना परिचय देते हैं आप उनको बैठने के लिए कहते हैं, ऑफर करते हैं बैठने के लिए, करेंगे ना? हाँ। फिर उसके बाद आप उनको पानी पूछते हैं, चाय अगर जरूरत है तो चाय पूछते हैं। तो हम कर्म कर रहे हैं, तो ऐसे 60 सेकंड्स में कितने कर्म कर सकते? 60 सेकंड तो बहुत छोटा समय है, तो कितने कर्म कर सकते हैं, व्यवहार में कितने एक्शन कर सकते, कितने? 2-3, नहीं उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो अगर हमने किसी से व्यवहार तो बहुत अच्छा किया तो +3, ठीक है? हमारे कर्म बहुत अच्छे थे, उनको सम्मान दिया, कॉर्डियल थे। अब एक मिनट में, 60 सेकंड्स में हम कितने शब्द बोल सकते हैं जो सामने वाला व्यक्ति समझ सके? कितने शब्द 60 सेकंड्स में, कितने शब्द, वर्ड्स जो समझ भी सके? सिर्फ बोलना नहीं है, सामने वाले व्यक्ति को समझना भी है। बताइए, 60 सेकंड्स में 60 हो जाएगा? और वो व्यक्ति को समझना है आपकी बात। शब्द कितने बोल सकेंगे हम 60 सेकंड? बहुत ज्यादा समय नहीं है जी, 30 भी डिफिकल्ट है, 20 ओके मैक्सिमम, ठीक है? तो 15 से 20, ठीक है, वो भी बहुत पॉजिटिव रहे आपने, बहुत सम्मान से, रिस्पेक्ट से जो भी बात की उनसे। कई बार हमारे कोई कलीग्स आते हैं, हमारे कोई सीनियर्स आते हैं, हम जानते हैं कि इनका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम बहुत ध्यान रखते हैं ना, उनसे अच्छी बातचीत करते। लेकिन 60 सेकंड्स में हम कितने विचार कर सकते? बहुत सारे, चलो 60 समझो। अब हम इनके बारे में अच्छा सोचते नहीं हैं। पास्ट में इंटरेक्शन में ये थोड़ा हमारे साथ सख्ती रखी थी उन्होंने, थोड़ा हमें समय पर सहयोग नहीं मिला था, या हमारे कोई साथी को इनसे सहयोग नहीं मिला, उसका फीडबैक हमारे पास है, तो हम इनके बारे में सोचते अच्छा नहीं है। तो +3 +20 -60 इम्पैक्ट क्या होगा संबंध पर? माइनस। फिर हम कहते हमने तो बहुत अच्छी तरह उनसे बात की, नहीं, हमने बहुत उनको सहयोग दिया, हमने हमेशा इनके बारे में अच्छा बोला, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा ही किया। लेकिन हम सारा दिन उनके बारे में, जिनके साथ आप रोज कारोबार करते, जिनके साथ आप कार्य करते, कलीग्स जो होते हैं आपके साथ टीम में होते हैं, आपके सीनियर होते हैं, उनके साथ आप क्या उनके लिए सोच रहे हैं? सपोज एक टीम में आप साथ में काम कर रहे हैं, मीटिंग में हैं, ठीक है, और अगर उस मीटिंग में कोई प्रोजेक्ट के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपस में मीटिंग्स करते हैं ना, कुछ कार्य होता है तो टीम को बुलाया जाता है, बिठाया जाता है ना, तो कोई आपके सीनियर हैं कलीग के रूप में, वो भी बातचीत कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। अब एक दूसरे के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, अगर वो एक दूसरे को मालूम पड़ जाए तो क्या होगा? ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि हम हर एक के लिए अच्छा नहीं सोचते। हमें लगता है क्या करें, काम पे तो ऐसे ही प्रेशर रहता है ना, कोई सहयोग देता है कोई नहीं, कोई कैसे बात करता है, तो क्या करें। फैमिली फ्रंट में चले जाएं, वहां भी यही रियलिटी है। जो हमारे बहुत समीप हैं, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, नहीं, कई बार जब हमारे विचारों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, नहीं, कभी डिस्कशन हो रहा है सुबह को, आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आपकी पोस्टिंग फैमिली के साथ है, आप जल्दी जल्दी में जा रहे हैं, नाश्ते पर कुछ बहन जी ने कह दिया और आपने एग्री नहीं किया, तो उन्होंने फिर कुछ और कह दिया आपको और आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अब आपने थोड़ा जवाब तो दे दिया, अब आप चले गए अपने ड्यूटी पर, बहन जी फिर अपने कारोबार में व्यस्त हो गई। अब आप जब कारोबार अपना कर रहे हैं पोस्टिंग में, तो क्या सोचेंगे, चिंतन क्या चलेगा, बहन जी के लिए क्या चलेगा या भाई जी के लिए क्या चलेगा, जीवन साथी के लिए क्या चलेगा कि ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं, हमने तो हमेशा उनको सहयोग दिया है, हमेशा उनके लिए ही आप सब कुछ किया, जो अभी भी कर रहे हैं वो भी उनके लिए, उनके ही बेहतरी के लिए, हमने उनके लिए समझ सोच के ये कहा, फिर भी वो समझते नहीं है, मुझे ऐसा कह दिया, तो कौन सी ऊर्जा हम भेज रहे हैं? अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि शाम को जब हम घर जाएंगे तो हमारे जीवन साथी को रियलाइज हो जाएगा कि कुछ गलत हुआ है, वो हमें आके सॉरी कहे, नहीं? लेकिन ऐसा होगा, क्योंकि सारा दिन हमने एक दूसरे को ऊर्जा कौन सी भेजी, वो पॉजिटिव नहीं थी, वो नेगेटिव थी, इसलिए वो संबंध जो है उसको वो ऊर्जा कौन सी मिल रही है, कमजोर होता जाता है। जैसे कहते भी हैं, कई बार कई तूफान जो होते हैं वो कई बार कई पेड़ों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, लेकिन कई बार एक छोटी सी हवा का झोंका भी उस पेड़ को उखाड़ देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ें कमजोर होती जाती है। तो ऐसे ही संबंधों में हम देखते हैं, हम रोज एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या भावनाएं, क्या वाइब्रेशंस एक दूसरे को भेज रहे हैं। बच्चों के लिए भी हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कई बार हमारा चिल्ड्रन कैंप भी होता है, तो पेरेंट्स अभी तक ब्रह्मा कुमारी से जुड़े नहीं हैं, इनको पता है तो कहते हैं बच्चों का कैंप आपका कब होगा, मुझे अपने बच्चे को भेजना है। वो बहुत नटखट है या वो बिल्कुल फोकस नहीं करता है, उसको एकाग्रता नहीं है, उसको आप मेडिटेशन सिखाओ। और हम दोनों कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, नहीं? मोस्टली जब हम पेरेंट्स आते हैं ऐसे, तो हम बहुत प्यार से उनको कहते हैं कि पहले आपको मेडिटेशन सीखना होगा, तब घर का वायुमंडल होगा जो बच्चे को भी इंस्पिरेशन होगा। लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे बच्चों के कैंप्स होते हैं, हर अभी मई में शुरू ही हो जाएगा, मोस्टली मई अप्रैल में, ये सब पे जिस स्थान पर जैसे वहां के स्कूल्स की छुट्टियां हैं वैसे, तो हमारे पास कई बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी हैं या कहीं सहयोगी हैं, कोर्स किया हुआ है, कई एकदम नए, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को भी ले आते हैं, और पहले शायद वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे वो इतने अच्छा इंटरेस्ट ले लेते हैं कि वो ये बातें जाकर फिर अपने पेरेंट्स को भी समझाते हैं। तो कई बार बच्चे हमारे पास आकर कहते भी हैं कि ये मेडिटेशन कितनी अच्छी चीज है, यहाँ भगवान से हम बात कर सकते हैं, तो जरूर हमारी हर बात वो सुनेंगे, मंगा सुनेंगे, तो उसमें कई बार अपने कम्युनिकेशन में, अपने मेडिटेशन में वो हमें शेयर करते हैं कि हम भगवान से कहते हैं कि मम्मी डैडी जो है वो झगड़ा नहीं करे, परमात्मा आप उनको शक्ति दो, समझ दो। हमारे पास एक और थोड़े समय पहले एक भाई आए, वो भी कोर्स कर रहे थे, माउंट आबू भी आए, तो उनके और उनकी पत्नी के बीच में थोड़े क्लैशेस होते रहते हैं। दोनों बहुत अच्छे पद पर हैं, अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व के पद पर है और बहुत बुद्धिशाली हैं। दो छोटी डॉटर्स हैं उनकी, तो अपना अनुभव सुना रहे थे कि कैसे एक दिन वो हमेशा ध्यान रखते हैं, कभी उनकी आर्ग्यूमेंट भी होती है तो दरवाजा बंद रखते हैं ताकि बच्चों पर उसका असर नहीं हो। फिर भी वाइब्रेशंस तो पहुंचते ही हैं, लेकिन एक दिन कुछ ऐसी उनकी आर्ग्यूमेंट हो रही थी तो उनकी डॉटर जो है वो दरवाजा खोल करके, उसको कुछ चाहिए होगा मम्मी से या डैडी से, तो वो अंदर आ गई। अब जैसे वो अंदर आई दोनों पेरेंट्स चुप हो गए, लेकिन वाइब्रेशन तो होता है। अब बच्ची को तो समझ में आ गया, पहले भी नोटिस किया होगा। उन्होंने दोनों को, जैसे कोई टीचर होते हैं स्कूल में, बच्चे टीचर्स को देखते हैं, तो दोनों को कहा अब दोनों आंखें बंद कर लो स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में और एक दूसरे के तरफ मोड़कर बैठ जाओ, दोनों आंखें बंद करो। अब मैं 1 2 3 काउंट करूंगी और जब मैं 3 काउंट करूंगी तो आंखें खोलकर एक दूसरे को आई एम सॉरी कहो। अब वहां स्कूल में टीचर कराती होगी ना, अब समझदार कौन क्या कहेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि हर संबंध में, विशेष करके जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम कार्य करते हैं, उस हर संबंध में शुभ भावना रखना, शुभ सोचना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तब वो संबंध क्या होगा, समीप आएगा, शक्तिशाली बनेगा, संबंध हील हो जाएगा। विचार अंतर हो सकते, मत भेद हो सकता है, मन भेद नहीं। जरूरी है, जरूरी है। जैसे हमारा ये टॉपिक ही है ना हारमनी का, तो हम देखते हैं हारमनी में एक बहुत सुंदर शब्द जो हारमनी है, तो हमारी दादी जी बहुत प्यार से हमें बहुत अच्छी बात कहती थी, दादी प्रकाशमणि जी, जिनका आप चित्र देख सकते हैं, हमारे फाउंडर पिताश्री ब्रह्मा बाबा के बाद अब हमारी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड उसके बाद रही हैं। और दादी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया ब्रह्मा कुमारी इसके ईश्वरी विश्वविद्यालय के विकास के लिए। दादी के साथ अनेक हमारी मीठी दादियां थी, हरेक का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। दादी जी, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही थी माउंट आबू में ही, और वो पूरा साल हमारा यूनिवर्सल हार्मनी फॉर अ बेटर वर्ल्ड करके टॉपिक पर चल रहा था। तो दादी जी ने हारमनी में एक बहुत अच्छी बात कही। दादी ने कहा, मैंने हार मानी, आप जीते हारमनी। हारमनी हो जाएगी ना, मैंने हार मान ली, आप जीते, अर्थात आपने अपने जीवन साथी की बात को स्वीकार कर लिया। डिस्कशन हो रहा होगा बच्चों के लिए, या कहीं बाहर आउटिंग जाने के लिए जो भी बात हो रही थी, या घर में कुछ आप रेनोवेशन करना चाहते हैं, उनकी अपनी राय, आपकी अपनी राय, आपने अपने जीवन साथी की बात को स्वीकार कर लिया, ठीक है। अपनी बात को आपने छोड़ दिया और उनकी बात को स्वीकार कर दिया, आपने हार मानी, उनको जो उन्होंने कहा वो स्वीकार किया। अब हारता कौन है, हारता कौन है? आपने उनकी बात को स्वीकार कर लिया, अब वातावरण तो ठीक हो जाएगा, नहीं बात तो, जो विचारों में अंतर था वो तो समाप्त हो जाएगा। अब हारा कौन जी, कौन हारा? जिनकी बात उन्होंने स्वीकार किया वो हार गए, वो हार गए, वो भी जीत गए। अच्छा, सपोज दो जीवन साथी हैं, तो अगर जिन्होंने बात स्वीकार कर ली सामने वाले व्यक्ति की, वो हार गए, वो जीत गए, और सामने वाले जिन्होंने अपनी बात मनवाई वो हार गए। कौन हारा? वो तो, क्योंकि जैसे ही उनकी बात हार गए तो वो तो उन्होंने आपकी भी बात को स्वीकार कर लिया, ऐसे ही होता है। जैसे हम सामने वाले व्यक्ति की, खास करके आप देखो जीवन साथी की, आप उनकी बात को स्वीकार कर लेते, कुछ समय के बाद कहते नहीं नहीं आपने भी जो कहा वो बहुत अच्छा है, चलो वैसे ही कर लेते, है ना, ऐसा अनुभव किया है। हाँ, तो हारता कौन है? कोई भी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं हारता है, लेकिन अहम हार जाता है। संबंधों के बीच में जो अहम है वो हारता है। और कौन हारता है? क्रोध हार जाता है, अशांति हार जाती है, दुख हार जाता है, मतभेद हार जाता है, नफरत हार जाती है, बीमारी हार जाती है। हारना चाहिए ना इन सबको। कौन जीतता है? आपका संबंध जीत जाता है, आपका आपसी स्नेह जीत जाता है, आपका स्वास्थ्य जीत जाता है, आपका परिवार जीत जाता है, आपके बच्चे जीत जाते हैं, आपके जीवन में जो आने वाली सारी खुशियां हैं वो जीत जाती हैं। जीतना चाहिए ना, जीतना चाहिए ना, स्वास्थ्य को जीतना चाहिए ना, संबंध को जीतना चाहिए ना। तो वो हमें परमात्मा यहाँ रोज सिखाता है कि जब हम जैसे ही स्वीकार करते हैं, जैसे ही क्षमा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही उनके साथ हमारे संबंध समीप आते जाते हैं। परमात्मा हमें कुछ शक्तियों का अनुभव कराता है राजयोग के द्वारा। पहले है तो सुनने की शक्ति। तो कई बार जब हम देखते हैं विचारों में अंतर होता है ना, अगर आप थोड़ा साइलेंस होकर एक ऑब्जर्वर बन जाए, जब दो व्यक्ति मतभेद में हैं, बॉम्बे में हम कई बार ट्रेन में देखते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखते हैं, नहीं कोई बात होती है जैसे ट्रेन में, वहां तो बहुत क्राउडेड ट्रेन, हम में से जो भी बॉम्बे पोस्टिंग हुई होगी तो आपने देखा होगा, मुझे लगता है और भी सिटीज में अभी ऐसे ही है, तो वहां अगर थोड़ा भी धक्का किसी को लगता है तो क्या हो जाता है, फिर अंदर में आपस में वो मतभेद हो जाता है। अब बात तो दो जन के बीच में शायद होगी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, सारे लोग जो आसपास है सब उस कॉन्वर्सेशन में, उस अंतर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कौन किसको धक्का लगाए वो तो पता ही नहीं पड़ता है, और सभी जोर जोर से कुछ बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि वातावरण ही इतना भारी बना जाता है। तो अगर हम सुनते हैं तो वास्तव में उनका आपस में मतभेद नहीं होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति कोई ना कोई अंतर में कोई तनाव होल्ड कर रहा है, और जैसे ही ऐसा कोई वातावरण होता है, वो जो अंदर में उनका तनाव बिल्ट अप स्ट्रेस है ना, वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हैं उसके बदले। और इसलिए कई बार जब आप देखेंगे कोई व्यक्ति आपसे व्यवहार अगर ठीक नहीं भी कर रहा है, तो उस समय उनकी मन की स्थिति को अगर आप सुनते हैं तो समझते हैं कि वहां कोई ना कोई दर्द है, हलचल है, स्ट्रेस है। बाह्य रूप से तो बहुत ऊर्जा दिखाई देती है, चिल्ला रहा है कोई व्यक्ति, अग्रेसिव है, बाह्य रूप से कोई स्ट्रेंथ दिखाई देती है, मन की स्थिति सक्षम है या कमजोर है क्रोध की मनोस्थिति में, हम सबका अनुभव है। उस समय मन की स्थिति कैसी है, एक सेकंड के लिए, एक बार हमारे बहुत अच्छे वक्ता थे जो हमारे साथ एक कार्यक्रम में गए थे, और उन्होंने बहुत अच्छा एक माइम किया, वो बहुत अच्छे एक्टर थे, तो थोड़े समय के लिए आप मन की आंखों से अपने आप को देखें क्रोधित अवस्था में, देख सकते हैं, देख सकते हैं ना, हाँ देखिए, और फिर स्लो मोशन में देखिए। वो हमारे भाई जो फैकल्टी थे वो उसको बहुत अच्छा माइम कर रहे थे, तो अपने आप को देखें मन की आंखों से, और देखें अपने क्रोध वाले चेहरे को, हाव भाव को, और स्लो मोशन में, नहीं जैसे फिल्म में दिखाते कोई व्यक्ति दौड़ रहा है बट स्लो मोशन, आंखों में कौन सा इमोशन दिखाई देता है, फेस में, मूवमेंट्स में कौन सा इमोशन दिखाई देता है, बहुत शांति का या अस्थिरता का, खुशी का या दर्द का, क्या दिखाई देता है उस समय, खुशी दिखाई देती है, दर्द दिखाई देता है, खुशी दिखाई देती, क्रोधित हमारे अपने दर्द होता है, अशांति होती है, कमजोर मनोस्थिति होती है, हलचल होती है। तो ये सुनने से हमें समझना सहज हो जाएगा, हम जितना सुनते हैं उतना ज्यादा समझते हैं। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम वो सुनना चाहते हैं, सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, नहीं, लेकिन सुनना अर्थात हर चीज को समझना। द मोर आई सीक टू अंडरस्टैंड द मोर आई विल बी अंडरस्टूड। जितना हम समझने का प्रयास करते हैं हमें औरों को समझना सहज हो जाता है। बट आज हम क्या करते हैं, वी सीक टू बी अंडरस्टूड मोर देन वी सीक टू अंडरस्टैंड, नहीं, हमारी बात सुनो, यही होता है। कोई बोलना भी शुरू करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, बीच में उनको रोक देते हैं। नहीं नहीं, पहले आप ये बात तो सुन लो, ये बात तो कर समझ लो। नहीं तो हम देखते हैं कि इसलिए संबंधों में समीपता नहीं आती है। बच्चे भी हम चिल्ड्रन कैंप में हमारे साथ बहुत बातचीत करते हैं, हम उन बहने उनके लिए कहीं बहने भी हैं और फ्रेंड्स भी बन जाती हैं, तो हमें बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। फिर हम उनको कहते हैं कि ये बात अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो मम्मी को कहो, डैडी को कहो, उनके पास टाइम नहीं है। उनका अनुभव होता है कि वो हम कुछ उनको कहने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, करेक्शन देते हैं, हमारी बात सुनते नहीं है। इसलिए मित्रता जो है वो प्रिय ज्यादा है, नहीं फ्रेंड से वो बहुत क्लोज है। तो समझना, सुनना अर्थात समझना, वर्तमान में रहना, उपस्थित रहना, हर एक संबंध में हर एक के वर्तमान में रहना बहुत जरूरी। पास्ट की बातों को क्षमा करना, बार बार हम वो बात को अगर वर्णन करते जाएंगे, बात को मन में रखकर बोलते जाएंगे, नहीं कई बार आपको करेक्ट करना पड़ता है, कारोबार में शिक्षा देनी पड़ती है, आपका टीम होता है, जिम्मेवारी होती है, करना पड़ता है, परिवार में भी करना। अगर बार बार हम उनकी पास्ट की कुछ बातों को वर्णन करते रहे तो क्या होता है, उनका मोटिवेशन कम हो जाता है, उनको शक्ति नहीं मिलती है उस कार्य को करने के लिए। तो उनके वर्तमान में रहना, क्योंकि हम जब उनको कुछ कह रहे हैं ये करना है लेकिन अंदर सोच रहे ये कर नहीं सकेगा, तो क्या हो रहा है, दो प्रकार का कम्युनिकेशन पहुंच रहा है। एक तो कि तुमको करना है, दूसरा तुम नहीं कर सकते हो। तो उनको हमने सशक्त किया या कमजोर कर दिया, बच्चों के लिए भी। नहीं, कई बार हम देखते हैं एग्जाम में जा रहे हैं बच्चा, अब बच्चा जाने के पहले हम क्या करते हैं, बच्चों से ज्यादा एग्जाम का टेंशन किसको है, और इसलिए बच्चे को हम कैसे बात बताते हैं, क्या बिल्कुल ध्यान रखना, कोई भी अपना क्वेश्चन मिस नहीं करना, एक भी आंसर यहाँ वहां नहीं करना, जो भी तुमको सुबह पढ़ाया जो भी अच्छी तरह याद रखना, अच्छी तरह लिखना, पढ़ना टाइम पर, सब चीजें देखना, ऐसे नहीं एक क्वेश्चन में लग जाना, टाइम ध्यान रखना, सब कुछ पूरा करना है। नहीं, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से तुमको मार्क्स अच्छे लेने हैं, लास्ट टाइम भी तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे, ये सब्जेक्ट को ध्यान से करना, अच्छी तरह पढ़ना। अब बच्चा किस मनोस्थिति में जाएगा, मैं तो थोड़ा धीमे रूप से कह रही हूँ, एक्चुअल में कई बार हम देखते हैं पेरेंट्स जब बच्चों को कहते हैं तो बच्चा निश्चिंत होकर जाता है और स्ट्रेस हो जाता है। तो इसलिए बच्चे के भी वर्तमान में रहना, उसको एम्पावर करना, उसको सशक्त करना कि बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ाई की है, अब आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, देखना बहुत अच्छा पेपर जाएगा, सब कुछ आपको आएगा अच्छी तरह से, कुछ नहीं भी आता है कोई बात नहीं, लास्ट में उसको फिर से पढ़ना, सब याद आ जाएगा। तो वर्तमान में रहना अर्थात क्षमा भी करना, उनको शुभ भावना रखना, सहन करने की शक्ति बहुत जरूरी है संबंधों के लिए। जहां हम देखते हैं कि हम बाह्य परिस्थिति को जो हम देख रहे हैं उसको समझते हुए भी, उस व्यक्ति के व्यवहार को देखते हुए भी उनके प्रति शुभ भावना रखते। अब आप में से कई लोग, आप देखिए चेयर पर है कुछ सोफा पर है, कुछ समय के लिए समझिए जो चेयर यहाँ बैठे ना उसको आपको बहुत टाइटली पकड़ना है, जो सोफा पर बैठे भले आप थोड़ा सोफा को पकड़ लीजिए, टाइटली पकड़ लीजिए, होल्ड ऑन टू इट वेरी टाइटली, जैसे वहां आप इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते हैं तो आपको करना होता है ना, तो यहाँ भी आपको करना है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको कहूँ टाइटली होल्ड करना हा? अच्छा अब मैं आपको कहूँ कि इस चेयर सहित इस हॉल के बाहर चले जाए, सोफा वाले तो नहीं कर सकेंगे बट चेयर वाले कर सकते, टाइटली होल्ड करके इस हॉल के बाहर जा सकते, इजी है, इजी है, अभी तक हो नहीं, होल्ड करना है नहीं, इजी है नहीं। अब आप होल्ड अपना छोड़ दें, अब मैं अगर आपको कहूँ ये कुर्सी को बाहर रखें या हम सब सारी कुर्सियों को बाहर अरेंज करें, पॉसिबल, हाँ इजी है, क्यों, जब आपने इसको होल्ड किया था तब कौन ज्यादा सशक्त था, पावरफुल कौन था, आप या कुर्सी? आप या कुर्सी? कुर्सी नहीं, वैसे तो ह्यूमन बीइंग ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि हमने क्रिएट किया है, हमने क्रिएट किया है ना इसको। लेकिन जब हमने उसको होल्ड कर लिया तो क्या हो जाता है, हम उसको शक्ति दे रहे हैं और वो फिर हमें इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है, हमें बांधता है। तो वो उसको होल्ड किया था इसलिए उस पोजीशन में हम इस चेयर को बाहर नहीं ले जा सकते थे, वो हमें सीमित कर देता है। ऐसे ही जब कोई संबंध में कोई व्यवहार हमसे ठीक नहीं कर रहा है, क्रोध कर रहा है, आवेश में है, कुछ भी हमें कह रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और हम अपने मन की स्थिति को उस सिचुएशन से क्लिंग करते हैं, होल्ड कर लेते हैं, उसने ऐसे कहा ही कैसे, नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस से, उसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा कह सकता है, ऐसा कर सकता है, ये तो बिल्कुल राइट नहीं है, इसको कोई हक नहीं है मुझे कहने का, ऐसे बच्चे ने कहा, इसके लिए मैंने इतनी उसके लिए सैक्रिफाइस किए लाइफ में, यही देखने के लिए, जीवन साथी ने यही कहा मुझे, ऐसे शब्द प्रयोग किए। तो हम जैसे अपने उस फीलिंग्स और इमोशन से अपने आप को, नेगेटिव फीलिंग से उस सिचुएशन से जोड़ लेते हैं, तो कौन शक्तिशाली हो जाता है? वो परिस्थिति, वो हमारे मन की स्थिति को प्रभावित करती है और हमें इतना इम्पैक्ट करती है कि हमारे अंदर भी वो गुस्सा आ ही जाता है, हमारे बोल, हमारे व्यवहार कुछ ना कुछ नेगेटिव हो ही जाता है। बाद में जैसे सिचुएशन थोड़ा शांत हो जाती, बाद में हम रियलाइज करते हैं ऐसे बोलना तो जरूरी नहीं था, बच्चे पर हाथ उठाना ही नहीं था, अपने जीवन साथी को हमने ऐसे कह दिया, हम तो उनको इतना प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, और ऐसे हमने शब्द प्रयोग कर लिया उनके लिए। बाद में रियलाइज करते हैं, फील बहुत करते हैं, लेकिन उस समय क्यों नहीं अवेयरनेस है, क्योंकि उस समय हमने उस परिस्थिति को अपना होल्ड किया हुआ है, स्वस्थिति हमारी कमजोर हो चुकी है और परिस्थिति प्रभावशाली है। अगर हम परिस्थिति को प्रभावित नहीं करेंगे तो परिस्थिति हमें प्रभावित करती है। सहन शक्ति अर्थात परिवर्तन शक्ति, हम अपने विचारों को नेगेटिव से पॉजिटिव में ले जाते हैं, हम अपने आप को समझाते हैं कि इस समय ये व्यक्ति की मनोस्थिति थोड़ी परेशान है, थोड़ा अंदर से अफेक्टेड है, थोड़ा कहीं ना कहीं हलचल में है, तो हम इस समय थोड़ा शांत रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है फिर, जैसे क्योंकि क्रोध तो क्या होता है, एक बॉल गेम जैसे होता है, कोई व्यक्ति 10 शब्द बोलता है, आप 20 बोलते हैं, फिर वो 50 कहता है तो आप 100 कहेंगे, फिर वो 200 कहता है, फिर आप 500 कहेंगे, लेकिन आपने बंद कर लिया, आपने बोलना बंद कर दिया, तो क्या होगा अब, क्या होगा प्रैक्टिकल में देखिए, अपने परिवार में, जीवन साथी के साथ, अपने कलीग्स के साथ, डेली जहां आपका इंटरेक्शन होता है, आपने चूज किया कि अभी मुझे कुछ इस समय नहीं बोलना है, मुझे शांत रहना है, तो क्या होगा, क्या होगा उस समय फिर, और उसको कहना तो गेम इज ओवर ना, अभी उसको एंजॉयबल तो नहीं होगा, तो वो कुछ समय के बाद शांत हो जाता है और फिर धीरे से क्या होगा, वातावरण भी थोड़ा लाइट इजी हो जाता है, फिर हम अपनी बात शायद कह भी सकते हैं, वातावरण समाधान की तरफ चला जाता है ना, जो कॉमन ग्राउंड है हमारा उसके आधार से फिर हम कार्य साथ में करना आरंभ करते हैं। तो सहन शक्ति के साथ साथ हम एक बहुत सुंदर सकारात्मक मनोवृत्ति परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हम एडजस्ट हो सकते हैं, हम समा सकते हैं, हम इजी हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। संबंधों में ये फ्लेक्सिबिलिटी, ओपननेस बहुत बहुत जरूरी है। हम कुछ समय के लिए उस परिस्थिति को अपने दृष्टिकोण से ना देखकर उनके दृष्टिकोण से देखें। नहीं, ऐसे कई पजल्स होते हैं, यहां से देखो तो अलग दिखाई देता है, वहां से देखो तो अलग। नहीं, कई बार आप देखें एक छोटा सा, अगर कोई भी साधन ही ले लो, तकिया ही ले लो, नहीं आजकल वो मल्टी कलर्स होते हैं, नहीं तो तकिया आपने होल्ड किया है, वहां से कोई देखेगा तो कहेगा ये हरा है, मैं कहूंगी ये तो नीला है, वो कहेंगे नहीं हरा है, क्योंकि ये बाजू जो कपड़ा है वो कौन सा है, नीला है, वो बाजू हरा है। हर एक अपने पर्सपेक्टिव से राइट है, वो जब देख रहे हैं अपने अनुभव से तो उनको ये रॉन्ग दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये रॉन्ग नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, ये राइट है, तो ये ऐसा ही है। तो उस समय फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात हम उस परिस्थिति को उस सामने वाले व्यक्ति के समझ से देखना शुरू करते हैं। बहुत सुंदर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्रकृति में उदाहरण है, एक घास का तिनका, जो ब्लेड ऑफ ग्रास होता है, जब तूफान आता है तो वो घास का तिनका क्या करता है, क्या करता है, बहुत बड़ा तूफान आ गया है, वो क्या करता है, वो सामना नहीं करता है, सामना नहीं करता है, नहीं, बहुत समझदार है, वो क्या करता है, झुक जाता है, झुक जाता है। और जब तूफान चला जाता है फिर क्या करता है, फिर से खड़ा हो जाता है और वो जो सुंदर हवा चल रही है उसका आनंद लेता है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है, प्रकृति में उस हवाओं का आनंद लेना, खुद लेना और औरों को देना, उसका लक्ष्य को तूफान से जूझने का तो है नहीं। तो उसी रूप से हम देखते हैं कि कोई परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति के साथ संबंध हमारे ठीक नहीं चल रहे, वो व्यक्ति उस समय वो बात स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो हम ओपन हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं, और फिर समय पर जब हमें मौका मिलता है तो हम उस व्यक्ति के साथ बातचीत कर लेते हैं। तो इसलिए ओपन होना, झुक जाना, स्वीकार करना, इसमें बहुत शक्ति चाहिए और समझ, इट्स स्पिरिचुअल विजडम, सिर्फ शक्ति नहीं विजडम है। तो हम देखते हैं कि जब समझ है तो क्या स्वीकार करना, वैल्यूज के आधार से नहीं चलना, लेकिन अपनी राय में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो तिनका अगर आप देखो तो उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती, जैसे हम बचपन में खेलते थे, या अभी भी बचपन में बच्चों को, कई बच्चे अभी भी खेलते हैं, हमारे बचपन में तो वो टॉय होता था, उसका मेटल फाउंडेशन होता था, तो बहुत हैवी फाउंडेशन होता था और वो टॉय लाइट मटेरियल का होता था, उसको धक्का दो तो गिर जाता था, और जैसे ही आप उसका प्रेशर रिलीज कर दो क्या होगा वो टॉय, तो बचपन में हमें बहुत अच्छा लगता है ना, छोटे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, धक्का दो वापस खड़ा हो जाता है। तो उसी रूप से हमारी जड़ें वैल्यूज के आधार से, हमारे मूल्यों के आधार से बहुत स्ट्रांग, लेकिन राय किसी और की अगर हमें स्वीकार करनी हो तो ठीक है, अगर विस रूप से करना है तो ठीक है, हम अपने आप को ओपन रखते हैं, हम परखते हैं कि किस संबंध में कैसे हमें कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कहाँ साइलेंट रहना है, कहाँ साइलेंट नहीं रहना है। तो हर संबंध में, हर परिस्थिति में समझना, परखना जरूरी है। मीटिंग चल रही है, आपको कहा गया अपने विचार देने के लिए, आप विचार देते हैं, फिर मीटिंग आगे बढ़ती है और कोई ऐसा अपना विचार दे रहा है जो आपको लगता है गलत है, क्योंकि आपके पास उसके लिए कुछ फैक्ट्स भी हैं, तो उस समय जंप इन करना, अलाउ करना उस मीटिंग को पूरा होने के, फिर अपनी बात रखना, परखना बहुत जरूरी है। नहीं, कई बार अगर हम उसी समय जंप इन करके अपने विचार दे देते हैं तो क्या हो जाता है, वातावरण ईगो इश्यू भी हो जाएगा, तो वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो समय को परखना, संबंधों में समय परखना, सामने वाले व्यक्ति की मनोस्थिति को समझना जरूरी है। बच्चे को हम शिक्षा जरूर देते हैं, लेकिन कहाँ देना है, अकेले में बहुत प्यार से, है ना। उनके फ्रेंड्स के सामने आपने कुछ कह दिया, क्या होगा, बच्चा हर्ट फील करेगा, नहीं। तो आपकी बात तो राइट है लेकिन समय राइट नहीं है। तो उस रूप में हम देखते हैं समय को परखना, किसी की मनोस्थिति को परखना। घर में भी आप देखेंगे, बच्चे हैं आपके, टीम में आपके साथ जो आपका टीम है, स्टाफ है, उसमें भी अलग अलग मनोस्थिति वाले होते हैं। कोई हैं बहुत सेंसिटिव होते, उनको आप जो कहते हैं आपको बहुत प्यार से कहना है। कई हैं जो शायद आपने थोड़ा स्ट्रांग भी कह दिया स्वीकार कर सकेंगे। तो हर एक की मनोस्थिति को समझना, समय को समझना, संबंधों में हमेशा क्या करना है, पीछे हटना है, शांत रहना है, परिस्थिति के समय पर जब भी आपके सामने सिचुएशन आती है, आपको बुलाया जाता है, सुरक्षा के लिए कोई नेचुरल कलामिटी होती है वहां बुलाया जाता है, तब क्या करना है? जंप इन करना है, है ना? तो परखना, तो वहां हमें शांत नहीं रहना है, वहां क्या करना है? तुरंत उस परिस्थिति का को समझकर उसमें नेतृत्व करके कारोबार करना, तो परखना होगा ना। ये तो सिर्फ संबंधों की बात है, जहां विचारों में अंतर बहुत हो रहा है वहां हमें थोड़ा शांत रहना है। तो कहां हमें कौन सा कार्य विशेषता यूज करनी है, कौन सी एटीट्यूड को यूज करनी है, उसके लिए परखना और फिर सही निर्णय लेना। जो हमने निर्णय लिए हैं हमेशा उसको स्वीकार करना, संगठन को मजबूत बनाना, हमेशा हमें जो हमारे साथी हैं उनको निर्णय लेने के प्रक्रिया में भी साथ लेना, सहयोग देना। आपका टीम है, आपने उनको डिसीशन दे दिया, है ना, अब आप एक्सपेक्ट करें वो 100% उसी को करें, इम्प्लीमेंट करें, मुश्किल है, नहीं, क्योंकि आपके लिए वो आपका डिसीशन है, उनके लिए वो आपका डिसीशन है, बॉस ने कहा इसलिए करना है। लेकिन अगर हम वो कार्य को साथ में कर रहे हैं, हम अगर उनके भी विचार पूछते हैं कि ये ऐसे करना है, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, तो क्या होता है? जब उनको डिसीशन मेकिंग में आपने इंक्लूड कर लिया तो क्या होगा? जीवन साथी को, बच्चों को इंक्लूड कर लिया, क्या होगा? हाँ, उनका भी राय आपने स्वीकार किया, उनको महत्व दिया, उनको एक्नॉलेज किया, तो संबंध कैसे हो जाते हैं? समीप, सहयोग। तो जब निर्णय लिया जाएगा तो किसका निर्णय है? हमारा निर्णय है, तो जिम्मेवारी लेंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं कि लोग कार्य करना चाहते हैं, जिम्मेवारी लेना क्यों? आपका निर्णय, आपकी जिम्मेवारी। तो हमें उनको कहीं ना कहीं प्रोसेस में भी साथी बनाना बहुत जरूरी, बच्चों को भी, आगे उनको भविष्य में क्या करना है, उनको किस प्रकार का एजुकेशन में जाना है, उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, जरूरी है उनकी लाइफ के लिए, बहुत बहुत जरूरी है। तो उस रूप में हम देखते हैं कि जैसे ही आपने उनके साथ इन्वॉल्वमेंट किया वो जिम्मेवारी लेंगे। तो जब भी कोई डिसीशन हुआ और उसकी रिजल्ट सामने आई तो उसमें जिम्मेवारी स्वीकार करना बहुत जरूरी है, तब संबंध मजबूत होते, है ना। अब क्या, जब ठीक होता है सब कुछ, जो भी आपका ऑपरेशन है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई, आपने जैसे बताया वैसे उसके अनुसार हो गया, रिजल्ट भी अच्छा है, आपके सीनियर्स आपको शाबाशी देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, हमने किया, स्वीकार कर लिया। लेकिन कई बार आपने अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई लेकिन अचानक उस समय परिस्थितियां थोड़ी अलग हो गई और उसके अनुसार हम उसको नहीं मोल्ड कर पाए और जो मैनेज करना था जितना वो सिचुएशन नहीं मैनेज हुआ, तो थोड़ा फीडबैक फिर सीनियर से नेगेटिव मिलता है, मिलता है आपको, मिलता है, हाँ। तो उस समय किसकी जिम्मेवारी, किसकी जिम्मेवारी? मेरी। सफलता जब होती है तो किसकी जिम्मेवारी? हम सबकी, टीम की। लेकिन जब फेलियर है तो किसकी जिम्मेवारी? मेरी। उससे संबंध क्या होंगे आपके टीम में, आपके साथियों के साथ क्या होंगे उस संबंध? हमेशा विश्वास के होंगे, सहयोग के होंगे, वो निश्चिंत होंगे कि कोई भी काम ये मुझे हमें कहेगा ना, कोई प्रॉब्लम आएगी ये सामने खड़ा हो जाएगा, है ना, निश्चिंत होंगे ना? तो सहयोग देंगे, देंगे, कोई भी कार्य होगा आपको साथी बनकर सहयोग 100% मिलना ही है, क्योंकि आपने जिम्मेवारी तब ली जब सब ठीक नहीं हो रहा है। और जिम्मेवारी लेना माना ही सशक्त होना, सीखना और आगे बेहतर करना। आई कैन फेल एट डूइंग समथिंग बट डजंट मीन आई एम अ फेलियर। तो जिम्मेवारी अगर आपने ले भी ली, माना ही, आप कुछ नया करके आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, ग्रोथ होगा। जो अपनी गलतियों की जिम्मेवारी नहीं लेता है उनके लिए क्या हो जाता है? प्रॉब्लम, वो गलती बार बार करने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि वो समझा ही नहीं वो ठीक नहीं है, नहीं। तो इसलिए आपको भी सशक्त करता है, आपकी भी प्रगति उसमें आगे बढ़ती है। और फिर हम देखते हैं संगठन जो है वो बहुत मजबूत रहना है। तो संगठन की मजबूती बहुत जरूरी है, चाहे वो संगठन घर में हो, चाहे फिर एक परिवार में हो, चाहे ऑफिस में हो। हम एक छोटी एक्टिविटी करेंगे संबंधों में पहले, फिर संगठन में देखेंगे, आपसी संबंधों में, जिनके साथ आप रोज कार्य कर रहे हैं या जिनके साथ हम रह रहे हैं। तो आपको एक आपके पैर के साथ ही एक्टिविटी करनी है, तो एक कोई भी फ्रेंड को आप थोड़ा हाथ मिलाएं उनके साथ, जो पैर बन जाएगा आपके लिए इस एक्टिविटी के लिए। नहीं, आपस में, तो फिर क्या है, जो बाजू में बैठे हैं उनको बनाइए, एक ही व्यक्ति आपके एकदम बाजू में जो है उनको एक पैर बनाइए, ठीक है। अगर आप में कोई को पैर इवन नहीं है, ऑड है, तो फिर पीछे आगे पीछे भी कर सकते, ठीक है। तो हाथ मिलाइए आपके फ्रेंड के साथ। आप दोनों हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब आपको दोनों को हाथ एक दूसरे से मिला के रखिए, तो हमें मालूम हो हर एक के पास पैर है, ठीक है। अब आप दोनों में से आपस में बातचीत कीजिए और जो समझते हैं आपस में आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, कंसेंसस से, जो फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है उसको अपनी मुट्ठी बंद करनी। आपस में कॉन्वर्सेशन कीजिए, बातचीत कीजिए दोनों में से, क्योंकि आप सभी तो बहुत सक्षम ही है वैसे, कहां कहां ऑब्वियस भी है। तो कोई एक को बस मुट्ठी बंद करनी आपस में, जिसने मुट्ठी बंद की वो हाथ ऊपर करे। हाँ, अभी हाथ छोड़ दीजिए, नहीं नहीं हाथ एक जिन्हों की, दोनों में से एक को मुट्ठी बंद करनी, नहीं छोड़ दीजिए हाथ अभी। हाँ, एक करिए ऊपर, थोड़ा सीधा। हाँ जी, ठीक है। तो हर एक ने एक एक चूज कर लिया, दोनों में से एक को हाथ ऊपर, मुट्ठी बंद करनी और हाथ ऊपर करना, ठीक है। अब जो दूसरे हैं जिनकी मुट्ठी बंद नहीं है वो हाथ ऊपर करें। हाँ, ये नीचे, जिनकी मुट्ठी बंद है वो नीचे करें, जिनकी मुट्ठी बंद नहीं है वो हाथ ऊपर करें। हाँ, अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हूं, ठीक है। थोड़े समय के लिए आपको ये मानना है कि जो आपका मित्र है, जिसकी मुट्ठी बंद है, ये उनकी मुट्ठी नहीं है लेकिन उनका हृदय है, दिल है। डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि हमारा हृदय बंद मुट्ठी के शेप और साइज का है, ठीक है। तो जिनके हाथ खुले हुए हैं उनको थोड़े समय के लिए मान लेना है। आपस में क्लोज में बैठे ना, तो जिन्होंने मुट्ठी बंद की है ना, वो अपनी मुट्ठी अपने फ्रेंड को दिखाएं। ऐसे नहीं करना, घबरा जाएंगे, ऐसे करना, ठीक है। अच्छा, तो जिनकी मुट्ठी खुली हुई है वो थोड़े समय के लिए मान लें कि ये मुट्ठी नहीं है, मुट्ठी का क्लोज करना है, ये इनका दिल है, हृदय है, और आपको इनसे बातचीत करनी है ताकि ये अपना हृदय, अपना दिल आपके लिए खोल दें। अब दिल खोलना माना वो संबंध में आपसी विश्वास लाना, आपसी स्नेह, आपसी सहयोग जरूरी है, एज कलीग जरूरी है। जब आप साथ में कार्य करते हैं, नहीं प्रोजेक्ट्स करते हैं, सुरक्षा के ऑपरेशंस करते हैं, नहीं जरूरी है, परिवार में भी जरूरी है, ठीक है। तो दो मिनट के लिए बातचीत कीजिए, 2 मिनट सिर्फ आपके पास है। तो जिनकी मुट्ठी खुली हुई है उनको इनिशिएट करना है कॉन्वर्सेशन, और जिनकी मुट्ठी बंद है या आपका हृदय है, जब आपको महसूस हो तब आप हृदय खोलना, बातचीत कीजिए 2 मिनट्स के लिए। मैं टाइम काउंट करूंगी, आप निश्चिंत हो जाइए, आप बातचीत करें। आपको उनको प्रेरित करना है कि वो अपनी मुट्ठी, अपना हृदय आपके लिए खोले, और जहां हृदय खोल दिया वहां ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, जहां भी हृदय खुल गया वहां ऐसे कीजिए। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, खुल गया। अच्छा, आगे नहीं खुला, हो गया, हाथ ऊपर किया नहीं, अच्छा हो गया। अच्छा, ओके, इजी था, अच्छा लगा। थोड़ा मैंने देखा, थोड़ा स्माइल कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, नहीं आगे वालों ने इतना स्माइल नहीं किया, नहीं बट फिर भी मुश्किल है शायद। तो आपने क्या बोला जो उन्होंने हृदय अपना खोल दिया, कोई भी बोल सकते, पीछे वाले, आगे वाले, आपने क्या बोला? हाँ, तो उन्होंने क्या कहा जो आपने हृदय, हाँ हाँ 1 मिनट सिर्फ, एक पूरा कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा अच्छा लगा जी, बैठे हुए बात कर लीजिए। अच्छा कैसे हैं, अच्छा लग रहा है। और किसी ने कुछ कहा? यहाँ तो इजी था ना दिल खोलना, प्रैक्टिकल में इतना इजी है नहीं? संबंध सुखदाई कैसे बन जाते हैं? जब हम एक दूसरे की विशेषताओं को देखते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं। हमारी दादी जी बहुत प्यार से हमें सुनाती थी, बहुत विशेष एक बात उन्होंने सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि जब भी हम किसी से भी मिलें, मुस्कुरा के मिलें। मुझे मालूम है थोड़ा सा आपको जहाँ सुरक्षा का कार्य करना होता है वहाँ आपको फर्म रहना बहुत जरूरी है, लेकिन आपस में कलीग्स के रूप में, कलीग्स के साथ तो रह कर सकते हैं। कई बार सुरक्षा का कार्य ही है इन्वेस्टिगेट करना, तो थोड़ा सा आपको उस रूप में फर्म करना, लेकिन जब आप साथ में कार्य कर रहे तो वहां तो एक दूसरे से मुस्कुरा सकते, कर सकते, हाँ घर में कर सकते, यहाँ कर सकते। दादी ने कहा मुस्कुरा के मिलना। दूसरा दादी ने कहा जिनसे भी मिले उनको कुछ पिलाना जरूर है। अब आप कहेंगे पानी भी हमारे पास हमेशा होता नहीं है तो हम क्या ऑफर करेंगे? दादी ने कहा दो मीठे बोल का शरबत जरूर पिलाना है। पिलाएंगे ना, मीठे बोल बोलेंगे ना। और तीसरा दादी जी ने कहा दिल खुश मिठाई खिलानी है। सिर्फ पिलाएंगे नहीं, कुछ खिलाएंगे भी ना, तो दिल खुश मिठाई अर्थात खुशी की मिठाई, उनको खुशी का अनुभव कराना। तो उस रूप से हम वो हर संबंध में वो समीपता, वो मैजिक जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब एक और सुंदर एक्सरसाइज है जो आप यहाँ लिस्ट देख रहे हैं, आपने इसमें बहुत सारे गुण दिखाई दिए हैं। तो सुबह हमने सुना आत्मा के सात ओरिजिनल गुण हैं, वो हमारे ओरिजिनल नेचर है, स्वभाव है, प्राइमरी कलर्स ऑफ द सोल। जैसे रंग होते हैं, तीन रंग है ना, हम जानते हैं ओरिजिनल तीन रंग होते हैं प्राइमरी कलर्स, उसको मिक्स मैच करके कौन से हैं? यहाँ पिता येलो ना, येलो है ना, हाँ। तो थैंक यू। तो हम देखते हैं ये सारे रंगों को जब आप मिक्स मैच करेंगे ना तो ये सारे रंग क्रिएट हो जाते हैं। तो ओरिजिनल में सिर्फ तीन है, ऐसे आत्मा के साथ गुण है, लेकिन हर गुण को जितना हम कर्मों में, संबंधों में, कारोबार में यूज करना शुरू करेंगे ना तो ये बहुत सुंदर गुणों के रंग हमारे जीवन में भर जाते, बहुत सारे वर्चूज, केपेबिलिटीज, क्वालिटीज हमारे अंदर आती जाती। तो ये सारे गुण, ये भी हमारे पास परमात्मा ने हमें सुंदर रूप से सौगात के रूप में दिए हैं। अब ये गुणों में जो गुण आपने यूज किया है वो क्या हो गया आपका? वो गुण स्ट्रेंथ बन गया, विशेषता बन आपकी बन गया, आपकी स्ट्रेंथ बन गई। कहते हैं ना इसके ये की स्ट्रेंथ है, ये इसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है। तो जो गुण आप बार बार कर्मों में यूज करेंगे ना, लाइफ में, इंटरेक्शंस में, ये आपको मिल जाएगा स्लाइड, आप चिंता नहीं कीजिए। और जो गुण हमने नहीं यूज किया वो क्या हो जाएगा? अब अगर यहां है शायद सहनशीलता, ये हमने यूज ही नहीं किया, या धैर्यता यूज ही नहीं किया, तो क्या होगा? मैं कैसे बन जाऊंगी? अधीर्य, नहीं कोई भी बात में एग्रेसिव। तो जो गुण नहीं यूज किया तो क्या बन जाएगा? वो अवगुण। अब परमात्मा ने हमें सारे गुण दिए लेकिन कुछ गुण हमने ज्यादा यूज किया, तो इसमें सबसे ज्यादा गुण आपने कौन सा यूज किया है जो आपकी विशेषता है? ये जैसे आपका सिग्नेचर है, ये गुण आपके अंदर नेचुरल रूप में, स्वाभाविक रूप में लोग महसूस करते हैं, वर्णन भी करते हैं, आपकी महिमा भी करते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और आपको भी अपने में वो गुण अच्छा लगता है। तो कोई एक गुण सिलेक्ट कीजिए, सारे गुण आपके पास हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा आपका जो की स्ट्रेंथ है वो आप चूज कर लीजिए और हाथ ऊपर कर लीजिए। जैसे आपने चॉइस किया ना, हाथ ऊपर कर लीजिए। और शायद वो शब्द इसमें नहीं भी हो, कोई और शब्द हो, दैट्स ऑल्सो फाइन, ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है। हाथ ऊपर कर ले सिलेक्ट करने के बाद तुरंत, हर एक को हाथ ऊपर करना है अर्थात हर एक को सिलेक्ट करना है, आगे वाले भी सभी, कोई भी एक गुण जो आपको लगता है आपने सबसे जास्ती यूज किया, आप में से कई अभी तक हाथ ऊपर नहीं किया। अच्छा ठीक है, ओके। दीदी दो मिनट के लिए मैं आपसे यहाँ से ही बातचीत कर लूंगी। तो दीदी वहाँ साथ में हमारे साथ हमें बहुत अच्छी प्रेरणाएं भी देते हैं सिक्योरिटी विंग में, और साथ में हम सेवाएं करते हैं। अब दीदी ने भी अपना गुण सिलेक्ट किया, मैंने भी सिलेक्ट किया, अब हम आपस में बातचीत करेंगे। आपको वो देखना है और आपको आपस में इंटरेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं अपना परिचय दीदी से करना चाहूंगी। अब वैसे तो मेरा नाम आदि सब कुछ दीदी को पता है, दीदी का भी मुझे पता है, लेकिन अब मैं परिचय करूंगी अपने गुणों के आधार से, ठीक है। दीदी मैं दृढ़ता हूँ, और मैं ये दृढ़ता की जो गिफ्ट है, जो एक चाबी है, आपको देना चाहूंगी। तो दृढ़ता से आपके जीवन में सफलता ही सफलता है। तो आप अपने गुण की गिफ्ट भी अपने फ्रेंड को देना। दीदी आप मुझे, हाँ जी हाँ जी। तो दीदी स्नेह है, और दीदी ने मुझे स्नेह की गिफ्ट दे दी। तो दृढ़ता के साथ स्नेह आ गया तो और भी कमाल हो जाएगी। अब आपको उठना है और आपस में इंटरेक्ट करना है। यू हैव टू स्पीक टू 5 पीपल, एटलीस्ट 5 लोगों से इंटरेक्ट करना है। थोड़ा उठ जाइए, थोड़ा म्यूजिक आप रख सकते हैं, आपस में मिलिए, हाथ मिलाइए, हाथ जोड़िए, जो भी आप कंफर्टेबल हैं। 5 लोगों से इंटरेक्ट करना है। थोड़ा मूवमेंट करना है, खड़े नहीं हो जाना है, थोड़ा पीछे जाइए, पीछे साइड में। सिर्फ आपको हॉल छोड़ के नहीं जाना है, बिकॉज वी विल बी हैविंग अ वेरी ब्यूटिफुल मेडिटेशन बिफोर वी एंड। सिर्फ खड़े नहीं होना है, बातचीत करनी है, बाजू में, लेफ्ट राइट, फ्रंट बिहाइंड, बहुत सारे मौके हैं। आपस में फिर बाजू के हमारे जो फ्रेंड्स हैं, मुझे तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपस में बात करनी है। बात कीजिए कोई भी व्यक्ति से, अपना परिचय दीजिए, गुण की गिफ्ट दीजिए उनको, उनसे गुण की गिफ्ट लीजिए। आपके पास 1 मिनट और है। अच्छा ठीक है, आप इससे कई तो सिर्फ खड़े हैं, तो ठीक है बैठ जाइए। अच्छा लगा, थोड़ा स्माइल करना शुरू हो गया, बैठ जाइए। अब ये क्यों अच्छा लगा हमारा आपस में कॉन्वर्सेशन, अच्छा लगा बातचीत की? क्यों अच्छा लगा? अब पूरा करना है कॉन्वर्सेशन, हाँ जी। वापस अभी बिग ग्रुप में आ जाएंगे, अभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए कई इतने एंथुजियास्टिक है कि अभी भी बातचीत कर रहे हैं, नहीं क्यों? हाँ अभी बैठ जाइए। अब क्यों अच्छा लग रहा था जो हमें कंटिन्यू करना था? म्यूजिक बंद कर सकते हैं। क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि हम आपस में जब बातचीत कर रहे थे तो एक तो किसके साथ बात कर रहे थे, यहां बाह्य स्व से कर रहा था या आंतरिक गुणों की लेन देन कर रहे थे, और फिर हम गिफ्ट दे रहे थे। गिफ्ट तो बहुत अच्छी गिफ्ट्स मिल रही थी जो हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। हर संबंध, कारोबार आप करेंगे ना जाके यहां से, आपके वर्क में बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, हर इंटरेक्शन में आपको सामने वाले व्यक्ति की विशेषता को मन में रखते हुए उनसे बातचीत करनी है। इससे मदद मिलेगी, मिलेगी हर कॉन्वर्सेशन, चाहे आपका टीम का हो चाहे दूसरे टीम्स, आपको क्रॉस टीम्स भी काम करना पड़ता है, फोन पर भी कितने लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है, तो हरेक की विशेषता को मन में रखकर फिर उनसे बातचीत करें। कभी कभी कॉन्वर्सेशन ऐसे भी होंगे कि आप एग्री नहीं करते, होते हैं घर में भी, होते हैं ऑफिस में भी होता है। इस व्यक्ति के साथ थोड़ा आपको डिस्कस करने जाना है क्योंकि आप बिल्कुल डिसएग्री करते हैं उनसे, होता है, शायद सीनियर भी हो सकता है आपका, लेकिन उस समय भी आपको उनकी विशेषता को मन में रखते हुए फिर बातचीत करनी है। तो संबंध क्या होगा? ऊर्जा जो एक दूसरे के प्रति होगी वो सिर्फ शुभ भावना वाली होगी, सकारात्मक होगी। विचारों में अंतर हो सकता है, जो हमने देखा मतभेद हो सकते, मन भेद नहीं, क्योंकि उनके साथ ही हमें आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते रहना है। तो हम हरेक के प्रति, अपने लिए भी और हर एक के प्रति उनकी विशेषताओं को देखते रहें। उसके लिए हमें अपने आप को सशक्त करना है, अपने आप को परमात्मा से जोड़कर परमात्मा के जैसे हर एक के लिए शुभ भावना रखना है। उस कैसे हम सब के प्रति उसके मन में सिर्फ और सिर्फ स्नेह है, शुभ भावना है, क्षमा भावना, तो उनसे हम सीखते हैं। तो चलिए हम कुछ मिनट के लिए अपने परिवार, अपने कार्य क्षेत्र सब में ये सकारात्मक वाइब्रेशन देंगे, ताकि हमारे संबंध हमेशा उनके साथ सुखदायी हों। मन की आंखों से अपने सुंदर स्वरूप को देख रहे हैं, भ्रुकुटी के मध्य में ये चमकता हुआ सितारा, मैं एक दिव्य सुंदर लाइट हूं, चमकता हुआ हीरा हूं। इस सुंदर हीरे से शांति की लाइट, पवित्रता की लाइट, स्नेह की लाइट चारों तरफ फैल रही है। मन की आंखों से अपने परिवार को देखें, अपने जीवन साथी को देखें, अपने बच्चों को देखें, भाई बहन, माता पिता, हर एक के मस्तक के मध्य में वो सुंदर लाइट को देखें। वो भी शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं। मन से उन्हें शांति के वाइब्रेशंस भेजें, वो सदा खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे दिल से दुआएं भेजें। मन की आंखों से अब अपने कार्य क्षेत्र को देखें। इस समय आपकी जहां पोस्टिंग है, जिन टीम्स के साथ आप रोज कार्य करते हैं, आपका फील्ड वर्क करते हैं, मन की आंखों से उनके मस्तक के मध्य में वो सुंदर लाइट को देखें। आपके सीनियर्स हैं, उनको भी देख रहे हैं, उनके भ्रुकुटी के मध्य में भी वो डिवाइन लाइट देखें। वो भी शांत स्वरूप आत्माएं हैं, परमात्मा के संतान हैं, आत्मिक रूप में आपका परिवार है। सदा उनके लिए शुभ भावना के वाइब्रेशन भेजें, सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें, ऐसे दिल की दुआएं भेजें। दिल से उनका धन्यवाद करें, आपके साथियों का, आपके बड़ों का, सीनियर्स का, आपके जीवन में, आपकी प्रगति में कितना मुख्य योगदान है। उनको प्यार से, दिल से शुक्राना भेजें। मन की आंखों से विश्व को देखें, ये सारा ग्लोब देखें। इस समय विश्व में अनेक स्थानों पर कितना तनाव है, दुख है, अशांति है। हर एक व्यक्ति के मस्तक के मध्य में वो सुंदर आत्मा देखें। वो भी शांत स्वरूप आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान है, ये विश्व परिवार है। शांति के वाइब्रेशंस, शक्ति के वाइब्रेशंस भेजें, परमात्मा की दुआएं भेजें। अंतर मन में उस शांति को महसूस करते हुए अपने आप को शुभ भावना, शुभकामना से भरपूर, बहुत लाइट, निश्चिंत, ब्लेस्ड फील करते हुए हम पुनः अपने आप को यहां वर्तमान में देख रहे हैं। ओम शांति।